نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن فاسأل به خبيرا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ صدی اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر یہ اشعار میں سے کچھ اشعار اکثر پڑھا کرتے تھے، جیسے یہ جب کبھی حضرت مجلس حضرت کی چل رہی ہوتی تو حضرت اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، غنیمت سمجھ لو اس مل بیٹھنے کو، غنیمت سمجھ لو اس مل بیٹھنے کو، مبادہ پھر یہ وقت ملے نہ ملے، مبادہ پھر یہ وقت ملے نہ ملے۔ تو وقت اور حالات کا پتہ نہیں ہوتا کہ آج حالات اچھے ہیں، سکون ہے، عافیت ہے تو ہم قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، مسجدوں میں بھی جا رہے ہیں، سانس ہی ملی نہیں ہے الحمدللہ، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اللہ نے اختیار بھی دیا بھائی ہر چیز پر، گھر میں ماشاءاللہ راشن بھی ہے، کیش ان ہینڈ بھی ہے، سب کچھ ہے، چین سکون عافیت بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، سارے معاملات درست چل رہے ہیں اور اللہ ہمیشہ نعمت اپنی جاری اور ساری رکھے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے، پھر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ مسجد تک نماز پڑھنے نہیں جا پاتا، پھر وہ تڑپتا رہتا ہے کہ مسجد نہیں جا پا رہا، گھر میں میری نمازیں ہو رہی ہیں، یا قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہا، ذکر اللہ نہیں کر پا رہا، بیمار ہو جاتا ہے۔ تو پھر احادیث مبارکہ میں یہ بھی نقل ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اگر کوئی بیماری کے دوران اپنے معاملات نہیں کر پاتا تو اللہ پاک اس سب کچھ وہی معاملات لکھ دیتے ہیں، اس کے نصیب میں اس کی نیت دیکھتے ہیں، اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ کرتا، تو بغیر کچھ عمل کیے سارے عمل اللہ پاک وہی لکھ دیتے، کیا اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ جو وقت حالات الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اس میں ہماری آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، قدردانی کی بھی معاملات ہوتے ہیں، اور اصلاح بھی اور تربیت بھی چھپی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، وہ اپنے معمولات نہیں کر پاتا، یا کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں، جیسے پہلے کرونا آ گیا تھا تو جمعے کی نمازیں تک ختم ہو چکی تھیں لوگوں کی، بڑا لوگوں کو غم ہوتا تھا۔ تو یہ جو وقت ملا ہوا ہوتا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ان کی قدر کر لو کچھ چیزوں کے آنے سے پہلے، جیسے تندرستی کی آدمی قیمت کر لے، قدر کر لے بیماری کے آنے سے پہلے پہلے بھی، اگر تندرستی عافیت ملی ہے پتہ ہی نہیں، بیماری آئے گی تو پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپے میں تھوڑی عبادت ہوتی ہے، گھٹنوں میں درد، یہ درد، وہ درد، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بےچارے بوڑھے ہوتے ہیں اور کرسیوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، کمر میں مورہ ان کا ہٹا ہوا ہوتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے چلا نہیں جاتا، پھر چلنے تک پڑتا آئی نہیں رہا، پوچھا کہ اتنے بوڑھے ہو گئے کہ وہ مسجد میں بھی نہیں آ پا رہے، بستر بھی نماز ہو رہی، پھر تھوڑے عرصے میں پتا چلا کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اسٹیجز اللہ پاک نے رکھے ہیں ہر چیز کے، تو وقت اور حالات پلٹتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ سلسل نے ارشاد فرمایا کہ فرصت کے نماز کی قدر کر لو مشغولیت سے پہلے، کہ اچانک اللہ نہ کرے کوئی ایسی مصروفیت پھر کوئی آ جائے گی تو پھر یہ فرصت کے لمحات کو یاد کرو گے۔ آج فرصت کے لمحات ملتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، موبائل لے کے بیٹھ گئے، یہ غلط استعمال ہے، مس یوز ہے، کیونکہ بھائی فرصت کے لمحات ابھی اللہ رب العزت نے ہمیں دیے اور اپنے لیے دیے۔ اسی طرح آخری بات کیا فرمائی ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے، آخر میں باقی ختم کر دی، یہ زندگی کی سانسیں جو ملی ہیں اس کی قدر کر لو موت سے پہلے، کہ اچانک ادھر اسلام آ جاتے ہیں، چلو بھائی ٹائم اب ٹائم پورا ہو گیا، بس کہانی ختم، پھر آدمی چیختا چلاتا ہے اندر سے لیکن بول نہیں سکتا، یہ سب یہی کہتے ہیں ٹائم چاہیے ٹائم چاہیے، تو یہ بڑی خطرناک علامت ہے۔ تو اسی چیز کو اگر فرماتے تھے غنیمت سمجھ لو اس میں بیٹھنے کو، وعدہ پھر یہ وقت ملے نہ ملے، یہ بھی گل پلازا کا واقعہ ہوا، یا اسی طرح بھی تھوڑے عرصے پہلے جو بیچارے وہ سوات وغیرہ میں طوفان آیا تھا، جو بیچارے ایک ٹکڑے پہ سب پوری فیملی تھی، کتنے لوگ پانی میں بہ گئے، شہید ہو گئے، یا آئے دن ہم تو کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہو تو ٹھیک ہے، ان سب کی شہادت ہوئی، اللہ نے ان کی مغفرت بھی فرما دی، شہادت کا رتبہ بھی دے دیا، ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائی، لیکن اس کے پیچھے بڑے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ इसमें वाकयात के पीछे कई राज होते हैं, इबरत की बातें होती हैं, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसकी हम खदा करें कि वो चलेगा, हम तो जिंदा हैं तो हम भी उनकी जगह हो सकते थे, इत्तेफाक से हम भी गुलफाम हो जा सकते थे, इत्तेफाक से, इत्तेफाक क्या अल्लाह का हुक्म होता, वो तो सबका हुक्म था ना कि जिसकी जहां मौत लिखी होती है वो कुछ जाएगा वहां पर। तो अल्लाह ने हमें चांस दे दिया, देखो तुम भी वहां पहुंच सकते थे, किसी भी बहाने में तुमको भेज सकता था, तुम्हें मैंने मोहलत दे दी, तुम्हें मैंने टाइम दे दिया, तुम्हें मैंने आफियत दे दी, मतलब ये है कि तैयारी कर लो, तैयारी वन बाय वन सबका नंबर आना है, कोई बीमारी से अल्लाह को प्यारा होता है, कोई एक्सीडेंट से, कोई पानी में बह के, कोई हवा में, तो सबके अपने अपने मौत अल्लाह ने जिसकी जैसी लिखी है वो अपने वक्त पे आती चली जाएगी। तो अकलमंद आदमी वो है जो अपनी फाइल को तैयार रखे, जैसे किसी मुरीद ने कहा अपने शेख से, मेरे बोर्ड से, कि हजरत कोई मुख्तसर जामे नसीहत कर दीजिए, कोई मैं इसको याद रख सकूं, तो उन्होंने यही फरमाया था कि मुख्तसर और जामे नसीहत ये, कभी भी इब्राहिम सलाम आ जाए तो ये कहना ना पड़े हजरत अभी आप कहाँ से आ गए, अभी तो कौल अल्लाह के मामला ये रहते हैं, कौल इबाद के मामला रहते हैं, तो ये कहना ना पड़े, अपनी फाइल को ऐसे अमाल की तैयार करके रखो, लेन देन के मामला हों, किसी तरह के मामला हो, सब साफ क्लियर होने चाहिए, किसी और भी आ जाए और बोले लेने और बोलो चले हजरत तैयार हूँ, ये है शानदार मौत। और फिर ऐसी ही मौतों को कहा जाता है मौत मोमिन का तोहफा है, तोहफे से तो इंसान खुश होता है, किसी को हदिया देते हैं, तोहफा देते हैं तो खुश होता है, हम डरते क्यों है मौत से, मौत तो तोहफा है मोमिन का, वजह क्या, तैयारी हमारी पूरी नहीं होती, तो तैयारी करने में जो है कोई इतने हाथी घोड़े भी नहीं, हाथी घोड़े भी नहीं लगते भाई, मैट्रिक में मुश्किल होती है, इंटर करने मुश्किल होती है, ग्रेजुएशन करने में टाइम लगता है 12 साल 12 साल 14 साल, लेकिन अगर आदमी अल्लाह का खौफ दिल में रख ले, अल्लाह का इश्क दिल में रख ले, तो चंद महीनों में सारी तैयारी हो जाए, 2-4 महीने में सारी तैयारी हो जाए, लेकिन फिक्र ही नहीं है, इतने बड़े इम्तहान की कोई फिक्र ही नहीं है, और जबकि अल्लाह ने पर्चा आउट किया हुआ। और दुनिया के इम्तहानों में हम क्या करते हैं कि सारे इम्तहान जो नहीं आने वाले वो भी याद करते हैं कि पता नहीं कौन सा सवाल आ जाए, फेल ना हो जाऊं, तो पूरी भूखी बहुत से लोग याद कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह बाद में आखिरत के सवाल बता दी कि ये सवाल करूंगा, तैयारी करके आना, पर चाउट है और वो मुश्किल लग रहा है, उसकी तैयारी नहीं है। ऐसे 4 अहम सवाल है ना, हशर वाले दिन उस वक्त बंदे के कदम जमीन से उखड़ेंगे नहीं, जवाब देना इसको। पहला सवाल है, एक उम्र दी थी, उम्र तवील दी थी, कहां और किस मशगले में गुजारी, क्या करते गुजारी, लंबी उम्र दी थी, काफी उम्र दी थी, कहा किस मशगले में गुजारी, दुनिया के चक्कर में पड़े रहे या हमें भी याद किया, या हरामकारी में लगे रहे, मोबाइल पे लगे रहे, दूसरे खुराफात में लगे रहे। दूसरा सवाल है, जवानी दी गई थी, कहां कहां किन कामों में खर्च की, उनका अलग सवाल है और जवानी का अलग सवाल है, जवानी दी थी हमने तुम्हें, कहां कहां किन कामों में खर्च की, जवानी का हिसाब देना है, अल्लाह कह रहे मैंने दी थी। नंबर 3, माल हलाल कमाया या हराम, माल हलाल कमाया या हराम, और कहां खर्च किया। बहुत से लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हलाल कमा रहे हैं, लेकिन आखिरी जो इसका जुज है बड़ा खतरनाक है, और कहां खर्च किया। जो हराम कमा रहे हैं वो तो हराम में एक सौ खर्च करते हैं, उनका तो मामला ही अलग है, लेकिन जो हलाल कमाने वाले भी फंसेंगे इस सवाल में अक्सर, कि कहां खर्च किया, कमाया तो हलाल लेकिन एलसीडी लगा हुआ है उसमें केबल वाले को 2-3 हजार रुपए या 4 हजार जो भी चल रहे हैं वो दिए जा रहे हैं, उसको पूरा घर खोश रियानियत के सीन देख रहा है, गंदे सीन देख रहा है, इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं, पूरी फैमिली बहन बेटियां अम्मा अब्बा सब लिपटा चिपटी, कोई शर्म गैरत नहीं है, आम बात है ना, इसको अब तो ये गुना भी नहीं समझी जाती, क्योंकि जब गुना आम हो जाता है तो उसकी बड़ाई भी, उसकी अल्लाह का गज़ब सब खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आम हो गया ना, ये भी वो गुना है, पता नहीं लोग गुनाह किस चीज को समझते हैं। तो हलाल कमाने वाले भी, ये तो एक मिसाल है, इस तरह देखते चले जाए कहाँ कहाँ हराम की कमाई, हराम जगहों पे देना हलाल की कमाई, इसी तरह बहन बेटियों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दिया लड़कों के साथ, वहां फीसें भरी जा रही, और हदीस शरीफ क्या बहन में है कि जिसने अपनी औलादों की बेहतरीन तरबियत करी उसको बड़ा अजर स्वभाव है, तो जहन में ये हदीस शरीफ है, ये तो उलपिटाई लगने वाली कहानी है। तालीम और तरबियत और अच्छी अदबोदार सिखाना बाप के ऊपर फर्ज है, माँ बाप पे, लेकिन शरई हदूद में ऐसी तालीम अल्लाह को दी चाहिए, ये तो मौजूद अभाव है, तालीम के खिलाफ नहीं है भाई, आप लड़कों के साथ क्यों पढ़ाते हैं, अलग क्या इंस्टीट्यूशन नहीं है क्या जहां सिर्फ खवातीन या लड़कियां पढ़ती हैं? तो शरई हुदूद में सारे मामला कर लें। तो बदला वो जो जितनी भी फीसें भरी जा रही हैं, हलाल से तो कमाया था, वो सब नाजायज जगह पैसा जा रहा है, ये गुनाह का सबब बनेगा, अजाब का सबब बनेगा। इसी तरह शादी भी में मूवी तस्वीर हलाल से कमाया लेकिन खूब दबा के इसराफ, फूल खर्ची, मूवी तस्वीर सब हराम में पैसा जा रहा है, तो बहुत से लोग फंसेगी। इसी तरह है बर्थडे की कहानी है, बर्थडे कहाँ से आई है? तो सब यहूद नसारे के तरीके, ये तो हैप्पी बर्थडे टू यू केक लेके जा रहे हैं या उसमें हिस्सेदार बने हुए या उस ऐसी तकारीब में जा रहे हैं जी सालगिरह है सना रिश्तेदार की, उसके बच्चे की जाना है वहां पर। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा चुके हैं जो जिस कौम की तादाद को बढ़ाएगा तो वो अमीन हुबूनी में से ही है। तो ये यहूद नसारा का कोई नकल कर रहा है और उसने पार्टी रखी है उनकी मासरत वाली, तो बंदा मोमिन के लिए जायज नहीं है कि उन चीजों में वो हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करे, बल्कि बायकॉट करना चाहिए ऐसी तकारीब का। और प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए कि यहूद नसारा के तरीके ये सही नहीं है, आपको बच्चे की खुशी करनी है, अल्लाह को अल्लाह ने आपको नेमत दी है, आप दावत कर लो, 10 तरीके होते हैं, आप वो डेट फिक्स ना करें, बस आदमी बोले कि अपने औलाद की खुशी में बस दिल चाह रहा है, आप सब लोग आए खाना खाए, भाई हल्ला गुल्ला करना है ना, एंटरटेनमेंट आपको करनी है ना करें, एंटरटेन करना है करें, को मना नहीं करा, लेकिन सालगिरह का नाम ना लें। 10 तरीके खाने पीने के, खुश रहने के, हंसने बोलने के, लेकिन हम अपना जो नीयत है वो तो दुरुस्त करें, वो तो अपने मामला सही करें, नीयत नहीं गड़बड़ होती है हमारे। तो हलाल कमाया अगर हमने तो हमें हलाल में ही खर्च करना है, मतलब ये हराम में खर्च नहीं करना, नहीं तो उसमें भी आदमी फंस जाएगा। और आखिरी सवाल था कि जो इल्म दिया गया था उस पर कितना अमल किया, जो इल्म दिया गया था हमने तुम्हें उस पर कितना अमल किया? गालिबन हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन चारों सवालों में से किसी सवाल से नहीं डरता, सबसे ज्यादा खतरनाक जो मुझे लगता है डर लगता है चौथे सवाल से कि अल्लाह ने अगर मुझसे पूछ लिया ऐ अबू दर्दा अगर हमने जो तुम्हें इल्म दिया था उस पर कितना अमल किया, तो आज लोगों को मालूम तो बहुत कुछ होता है लेकिन वो मालूम मामूल का हिस्सा नहीं बनता, वो मालूम मामूल का हिस्सा नहीं बनता। तो ये है फिक्र की बात, ये है फिक्र की बात। तो ये जो वक्त हमें थोड़ा सा मिला हुआ है इसकी हम कदर करने की, कुछ नहीं पता जिंदगी की किताब कब बंद हो जाए, कुछ नहीं पता। और ये नहीं आदमी डर जाए मौत से या मायूस हो जाए कि क्या जिंदगी, नहीं खाए पिए हंसे बोले, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि आखिरत जो है जो जन्नत है वो दुनियावी जिंदगी के लिहाज से हर तरह से शानदार और बेहतर है, हर तरह से। और फिर अल्लाह ने आखिर में फरमाया क्या इतनी सी बात तुम्हारी अकल में नहीं आती, इतनी सी बात तुम्हारी अकल में नहीं आती कि मजे। लेकिन किसके भाई जो नेक आदमी होता है जो अल्लाह को राजी करके मरता है, ये कोई मौत या खौफ की डरने की बात नहीं है, ये तो जो सच्चे लोग होते हैं वो तो यही दुआ करते हैं अल्लाह पत्नी कब तुझसे मुलाकात होगी, कब वसल होगा तुझसे, क्योंकि उनको जिंदगी एक बोझ नजर आती है। लेकिन अल्लाह के लिए जिंदा होते हैं और हुकूक वाले बात पूरे करने की नहीं, सच्चे आशिकीन का दिल दुनिया में नहीं लगता क्योंकि उनको वहां के मजे चाहिए होते हैं, हम लोग डर जाते हैं, भाई डरने की बात थोड़ी है, मजों का सिलसिला तो शुरू होगा नजर के आलम से उसी वक्त से, कब्र में हशर में या जन्नत में जाने के बाद थोड़ी बहुत जो मौत का वक्त शुरू हुआ, बस वेबसाइट खुल गई, आलम गैब नजर आना शुरू हो गया, मरहबा मरहबा की आवाजें लगना शुरू हो जाती हैं, खुशबुएं आने लगती हैं, फरिश्ते ऐसे ऐसे हसीन फरिश्ते आते हैं कि अगर किताबों में उलमा कराम ने लिखा है हवालों के साथ कि अगर कोई मैयत सब दुनिया से जाने वाली अगर उसको जन्नत ना भी मिले सिर्फ वो फरिश्तों को देखना ही उसकी जन्नत से बढ़ के, कहता बस मैं इनको देखता रहूं ये मुझे देखते रहे, कौन सी जन्नत और कौन से मजे, उतने हसीन इतने प्यारे होते हैं, खुशबूदार कफन लेकर आते हैं और सलाम करते हैं और कहते या वली अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ अल्लाह के वली सलाम हो तुझ पर, तो मजों का सिलसिला शुरू होता है। और फिर क्या क्या चीजें होती हैं, रिहान और अंबर की पत्नी क्या क्या चीजें लेकर आते हैं, जन्नत की खुशबूदार क्या मंजर होता है जिसको आदमी लफ्जों से नहीं बयान कर सकता, तो अजीब मामला शुरू हो जाते हैं। और अगर उस कैफियत में अगर किसी को कहा जाए भाई घर में तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, तुम्हारा कारोबार है, सब बेचारे रो रहे हैं, तुम्हें वापस दुनिया में भेज दें, क्या चाहते हो? तो कह रहे नहीं, कौन सी बीवी, कौन से बच्चे, कौन सा कारोबार, दूर दफा दूर, बस जल्दी जल्दी जो चीजें मुझे दिखाई जा रही है बस यहां तक मुझे जल्दी पहुंचा दो। तो वो कोई भी नेक दुनिया से जाने वाला दुनिया में आने की ख्वाहिश नहीं करता। अगर उसको चांस दे भी दिया जाए वापस दुनिया में जाने का, वो मजे। तो जो अल्लाह के जो आशिकीन होते हैं, जो अपने कलाम सुना जीते जी अल्लाह के कुर्ब के मजों में घूम रहते हैं, और फिर मरना जब शुरू होता है उनका नरक आलम शुरू होता है, असल सही मजे वहां से शुरू होते हैं। तो बनता है मोमिन के तो वही मजे, लेकिन भाई मजे कब है दुनिया में भी और आखिरत में भी? तकवा की बरकत से। नहीं तो अगर तकवा नहीं है और आजाद जिंदगी है तो दुनिया में भी फितूर मसले मसाइल और परेशानी उसके साथ चलती रहती है और नगर के आलम से धड़ाई पटाई शुरू हो जाती है। खालिद ने कहा था ना, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाए, मर के भी चैन ना पाए तो किधर जाए। बहुत से लोग कहते हैं ना यार जान छूटे जिंदगी से, यार वहां की ने तो बड़ा अपने जखीरा जमा किया हुआ है, जब हम पता है कि मौत के साथ ही जन्नत फिरदौस मिलेगी। अरे भाई ऐसा ना हो कि फिर मर गए, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली तो पता चला कि वो कहे यार इससे अच्छा तो दुनिया की परेशानी है, यहाँ पे भागा पटाइए। तो नाफरमान जो लोग होते हैं आजाद लोग, उनकी दुनिया में भी परेशानियां चलती रहती हैं और मौत के साथ और हशर और कब्र में सब जगह धुनाई पटाई है। अल्लाह किसी को बख्श दे, लेकिन भाई कानून का मामला अलग है, रहमत का मामला अलग है। पता नहीं है किसके साथ कानून का मामला होगा, किसके साथ रहमत का। तो हजरत फरमाते थे इस बहस का बेहतरीन जवाब यह है कि अल्लाह के कानून का अदब करते हुए उसकी रहमत पर भरोसा रखो, उसके कानून का एहतराम करो और फिर उसकी रहमत पर भरोसा रखो। क्योंकि हम गैब नहीं जानते, हम नहीं जानते हमारे साथ कानून के हिसाब से मामला होगा या अल्लाह पाक अपनी रहमत का मामला फरमाएंगे। आजकल लोगों के जहन में पत्नी क्या बात आ गई, अक्सरियत होगी कहती है अरे अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, सुबह से लेकर रात तक लौबाली जिंदगी है, जाहिलाना जिंदगी है, अजीब गरीब जिंदगी है जिसमें सिवाय गुनाहों की भरमार के कुछ नहीं है। कौन सा ऐसा गुनाह लोग नहीं करते, और उसके बाद इतने इत्मीनान से कहते हैं अल्लाह बड़ा गफूर रहीम। अरे भाई अल्लाह गफूर रहीम है उससे कौन इनकार कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया गफूर रहीम मैं उनके लिए हूँ जिनसे नादानिश्ता तौर पर किसी से वो गुनाह हो जाए, फिर उसका एहसास हो मुझसे तौबा करे तो फिर वो मुझे गफूर रहीम पाएगा। गफूर रहीम की तो ये तशरीह, ये पत्नी कहां से कह दिया भाई? जो सहाबा कराम थे आला रफाब के जो लोग थे उनको अशरफ वशरम जो उनके नाम है, तो जन्नत का सर्टिफिकेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उनको मिल गया था। वो तो 10 अफराद थे बस, अब क़यामत तक किसी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है अशरफ वशरम में, बस उनके नाम थे 10 लोगों के लिए खुशखबरी जो थी कि जन्नत ही है बस, अब क़यामत तक के लिए कोई नहीं है ऐसा। और जिनको जिनके सर्टिफिकेट इश्यू हो चुके थे जन्नती होने के, उनका क्या हाल था? हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे काश में ये दरख्त होता जैसे, और इसको काट दिया जाता और इससे लकड़ियां बनती और इससे दूसरी चीजें टेबल वगैरह नहीं जो भी लकड़ी की चीजें होती ये बना दी जाती, बड़ा ही इसको मुख्तलिफ चीजों में ढाल देते, यानी दरख्त मैं होता फिर काट के, यानी मेरा वजूद खत्म हो जाता। अल्लाह तूने मुझे इंसान बनाया, फिर अब मैं इंसान बन गया, फिर मुसलमान, अब मैं फंस गया, अब तो मुझसे बाखुश करेगा, मैं क्या जवाब दूंगा तुझे, मेरा अमाल कुछ नहीं। कौन? जो जन्नती होने की जिनको बशारत मिली हुई थी उनका ये हाल था, पक्के जन्नती थे, जिनकी जन्नती होने में कोई शको शुबा नहीं था, वो तो इतना खौफजदा रहते थे, रोते रहते थे रात रात भर, डरते रहते थे। आज हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन हमें 100% यकीन है कि मैं सीधा जन्नत में जाऊंगा, मैं जन्नती हूँ। भाई ये बड़ी खतरनाक अलामत है, अल्लाह के कानून का अदब करते हुए एहतराम करते हुए फिर उसकी रहमत पर भरोसा रखें, फराइज वाजिबात पूरे करें। अल्लाह ने कुरान पाक में जगह जगह फरमाया क्या रोशनी अंधेरा कभी बराबर हो सकता है? क्या एक फासिक फाजिर गुनहगार और एक मुत्तकी बराबर हो सकता है? क्या कोई काफिर और ईमान वाला कभी बराबर हो सकता है? अल्लाह ने हर चीज की हिद रखी है, जैसे सूरज है कभी दिन की रोशनी, सूरज कभी रात की अंधेरे के बराबर हो सकता है? सबकी अलग अलग मुखालिफ सिमतें हैं, फर्क होता है इनमें, जिद है हर चीज की। अल्लाह, ये जो चीजें हैं इसको हमें जिंदगी में ही समझना है। और अगर वक्त ऐसी अगर हमने गुजार दिया फालतू चीजों में तो बड़ा खसारे का सौदा हो जाएगा। और ये वसीयतनामा मैं जो अक्सर देता रहता हूँ इसको पूरा करें, रजिस्टर में उसकी एंट्री करें, जो चीजें रहती हैं वही बात मुबादा ये वक्त मिले ना मिले, मतलब ये कि उसमें वो अमाल लिखे गए हैं कि जो आदमी उसको पढ़ के पूरा उस पर अमल कर लेगा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि अल्लाह उसको बख्श दे और वो कानून के हिसाब से ताकि चीजें उसकी पूरी हो जाएगी, फिर उसकी रहमत पर भरोसा करे, अकलमंदी का कहा हो गई। और उसके बाद भी हजरत वाला फरमाते थे कि कभी वक्त आ जाए तो अल्लाह से कह दो, अल्लाह पाक तेरे फजल तेरी रहमत से जो भी मुझसे टूटी फूटी कोशिश हो सकी, अल्लाह कोई अमल मेरा तेरी शायन शान नहीं है, अपनी रहमत से अल्लाह कबूल फरमा ले और मेरी मगफरत फरमा दे जो कमी बेशियां रह गई। यकीनन हम कितने ही पढ़ लिख लें, कितनी चीजें पूरी कर लें, लेकिन दावा नहीं कर सकते कि मैंने सारी चीजों को पूरा कर दिया, लेकिन कुछ तो करें ना। जो उलमा कराम ने जो वसीयत नामा जो किताबों में लिखा है कि जो चीजें इंसान को पूरी रखनी चाहिए, ये नहीं कि वो बूढ़ा हो या मरने के करीब हो तो वो ये वसीयत नामा पूरा करेगी, क्योंकि भाई आने की तरतीब होती है, जाने की तरतीब नहीं होती। दादा बैठे हैं, पोता निकल गया, अल्लाह को प्यार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका दुनिया से निकल गया वो, भाई क्या पता किसी का। तो आने की तरतीब होती है, जाने की तरतीब नहीं होती। तो बस बलूगत 15 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, शरीय अहकाम 15 साल की उम्र से उलमा कराम फरमाते हैं कि लागू हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो सुस्ती काहली लापरवाही अच्छी चीज नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब भी आदमी वसीयत नामे का फॉर्म पूरा कर लेता है, भर लेता है और अपने अमाल देखता है और उसको तैयारी में लग जाता है, तो दिल को एक इत्मीनान सुकून एक वाली कैफियत पैदा हो जाती है, घबराहट बेचैनी नहीं होगी इंशाल्लाह उसको, एक अल्लाह की तरफ से सकीना उसके दिल के ऊपर आएगी कि अल्लाह का शुक्र है ये सारी चीजें जो मैं पूरी कर रहा हूँ। खास तौर पर जो एक चीज होती है वो होती है हुकूक इबाद में बहुत लोग फंसते हैं, बड़े बड़े दीनदार लोग भी बहुत, ये बड़ा खतरनाक मामला है हुकूक इबाद का जो मामला है, ये इस तरफ तवज्जो लोग कम देते हैं तवज्जो। मुफ्ती साहब ने बताया कि हमें जो मदरसों में किताब पढ़ाई जाती है, जो आले मुफ्ती बनते हैं, तो मैं किताब होती है हिदाया, तो वो 2000 पेज की किताब है और 4 जिल्द है उसकी, और एक जो जिल्द है वो 500 पेज की है। तो कह रहे हैं एक किताब जो जिल्द हिस्सा अव्वल जो है, उन्होंने कहा वो 500 पेज की वो सिर्फ एक हुकूक अल्लाह के ऊपर है, और 3 जिल्द जो है 1500 पेज की वो हुकूक इबाद के ऊपर है। तो हुकूक इबाद की कितनी अहमियत होती है। तो आज अक्सर जो दाढ़ी वाले जो खासतौर पर जो लोग बादशरा हम लोग होते हैं, उनमें से अक्सर जो शिकायत आती है हुकूक इबाद में बहुत पीछे होते हैं, और बाद बेदीन लोग होते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते इतनी ज्यादा, ना इतने दीनदार होते, लेकिन माशाल्लाह हुकूक इबाद में बहुत आगे होते हैं। तो होना क्या चाहिए कि भाई ये इंसान हुकूक इबाद और हुकूक इबाद दोनों पूरा करने की कोशिश करे, दोनों जरूरी है, दोनों लाजिम और मजलूम है। तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और खास तौर पे जो जुल्म के जो मामलात होते हैं उससे भाई बचें, जुल्म के मामलात, चाहे वो औलादों के साथ जुल्म हो, माँ बाप को अजियत कोई दे रहा है या बीवी के साथ जुल्म कर रहा है, तो ये जुल्म के जो मामलात होते हैं किसी के साथ भी किसी भी अंदाज में, या कोई कंपनी का बॉस है या कोई अफसर है अपने मातहतों के साथ अपने लोगों के साथ, अगर वो जुल्म ज्यादती कर रहा है उनके लिए अजियत का बाइस बन रहा है, तो यकीन जानिए बहुत परेशानी का मसला हो जाएगा उसके साथ। तो ये इस तरफ लोग तवज्जो नहीं देते, और ये हुकूक इबाद के और जुल्म के मामला ऐसे होते हैं कि अक्सर मशायख फरमाते हैं कि इसकी सजा अल्लाह का अज़ाब अक्सर दुनिया में आ जाता है, मरने के बाद जो होगा वो तो हो ही होगा, लेकिन दुनिया में भी उसका अज़ाब आने का बहुत अभी अंदेशा बढ़ जाता है। तो बस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जान बूझ के हमारी जात से किसी इंसान को तकलीफ ना हो। इंसान क्या, इंसान जानवर को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चींटियों को भी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह वाले वो है जो चींटियों तक को अजियत पहुंचाने से बचते हैं। हमारे दादा शेख हजरत अब हजरत मौलाना अब्दुल गनी भूलभुरी साहब रहमतुल्लाह अलैहि एक दफा एक बार वजू कर रहे थे, तो हजरत बार बार वजू करते हुए जगह तब्दील कर रहे हैं, कभी वहां कर रहे हैं कभी वहां कर रहे हैं, तो हजरत को ताज्जुब हुआ, हजरत आप ये बार बार वजू करने के दौरान जगह क्यों तब्दील कर रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि यहाँ पर चींटियों का मैं पूरा लश्कर देख रहा हूं, तो अगर मैं पानी यहाँ पर गिरते तो इनके पूरे पूरे खानदान, इनकी रिश्तेदारी है, इनके पूरे पूरे कबाइल होते हैं चींटियों के, तो पानी अगर गिरता ही तितर बितर हो जाती है और बिछड़ जाती है आपस में अपने प्यारों से, तो इसलिए मैंने जगह चेंज करी। दूसरी जगह गए तो वहां पर भी सिलसिला मैंने देखा, तो मैंने वो जगह भी छोड़ दी, फिर मैं तीसरी जगह आके बैठा जहां पर चींटियां नहीं थी। यानी अल्लाह वाले अनजाने भी कि हमारी रात से पानी जो गिरेगा उससे चींटियों को भी तकलीफ ना हो, ये होते हैं अल्लाह वाले। आज तो भाई चींटियां क्या, जितनी बाज लोग जो चींटियों, अल्लाह वाले तो चींटियों की कदर करते हैं, और जितनी बाज लोग अपनी बीवियों को चींटी बराबर भी नहीं समझते, तो भाई ये आह जो निकलती है ना, आह दिल से बद्दुआ देना जरूरी नहीं है। बाद लोग कहते हैं बद्दुआ तो नहीं दी ना, अरे किसी का अगर दिल ही दुख गया हमसे और दिल से आ निकल गई, खाली दिल दुख गया बस, वो बद्दुआ ही है, काम उतर जाएगा। जरूरी नहीं है मुंह भर के बोले अल्लाह तुझे हलाक करे, जरूरी नहीं है। मेरी कभी बद्दुआ नहीं देगी, मोहब्बत है ना, उसको पता है बेचारा नहीं रहा, मैं ही सबसे ज्यादा परेशान हूँ और मोहब्बत की वजह से। लेकिन बार बार दिल दुखना जो है ना बीवी का, बार बार उसका दिल दुखना, तीस होना दिल को, वही बर्बादी के लिए काफी होता है। ऐसी जिंदगी में मुझे लोग मिले जिनके बारे में पता चला कि बाकायदा उनके बीवी और उनके बेटे और उनकी बेटियां बाकायदा दामन उठा उठा के बद्दुआएं दे देते, शौहर बीवी बोलती थी अल्लाह हमारा शौहर जाए तो अल्लाह उसको दोबारा घर में आना नसीब ना हो, कोई टैंकर इसको मार दे। और आधे बेटे बेटियां दुआ बद्दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ये जाए बाप तो घर में ना आए दोबारा, रोज रो के दुआ करते कह रहे मरता ही नहीं है। और बादशरा घराना, दीनदार घराना, शरई पर्दों वाला घराना, तो तहकीक करी गई तो बड़ा ज्यादती वाली बात है, पता चला कि बाप के मामला की ऐसी कि वो हशर किया हुआ था कि आठ आठ आंसू बुलाता था, फिर क्या होगा, फिर बद्दुआएं तो निकलेंगी। पढ़ते रहो नमाजें, करते रहो अल्लाह उम्र, तो अल्लाह को पता है कि कबूल है भी या नहीं है। तो कबूल बात की तरफ जो है ना, ये बड़े खतरनाक मामला होते हैं, गुण जाति वाले मामला खासतौर पर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं बच्चा पैदा होता है ना तो सब उसके माँ बाप, उसके ननियाल ददियाल जो भी उसके बड़े होते हैं सब हंस रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन बच्चा रो रहा होता है, सब हंस रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं सब। लेकिन फरमाया कि जब होना ये चाहिए, जब तुम दुनिया से जाओ मर के तो तुम हंसते हुए जा रहे हो और दुनिया रो रही हो, तुम हंसते हुए जा रहे हो, उल्टा होना चाहिए। बच्चा आता तो रो रहा होता है ना तो सब हंस रहे होते हैं, लेकिन जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम हंसते हुए जा रहे हो और दुनिया रो रही हो, क्या चीज चली गई। इतने हमने ऐसे जनाजे देखे कि जनाजा उठा तो पता नहीं कौन कौन से लोग आ रहे कि जी फलाना साहब उनको तो फूट फूट के रो रहे हैं कि हमारे घर में इतने पैसे दिए करते थे, कितनी बेवा औरतें आ रही है कि हर महीने इतने पैसे भिजवाते थे, कितने लोग आ रहे हैं, कितने घरों का हमारे चूल्हे ही जला रहे थे। और जब पूछा गया तो ना बीवी को पता ना बच्चों को पता, बाकायदा सबूत के साथ चीजें उन्होंने पेश करी। तो इतना छुपके नहीं काम करते थे कि बीवी बच्चों को भी नहीं पता कितने घर उन्होंने पाले। तो ऐसी बंदा मोमिन की जिंदगी होनी चाहिए, और नए कमाल जब करे तो कोशिश करे बीवी और बच्चों को भी ना बताए। ये है आला दर्जा। दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाए, तो कहते ना आटा गीला करके नहीं आए, नुकसान करके दुनिया में ऐसे कुछ लोग मर रहे बोल रहे कि दुनिया में बस बीवी बच्चे खुश है, बस नहीं चल रहा कि कोरमा बिरयानी कढ़ाई बनाया यार आज, बला टली मुसीबत कम वक्त, जिंदगी 40 साल से आराम की हुई थी। खातून का पता चला वो अपने भाई के पास अमेरिका जा रही है, वो पूछा गया भाई क्यों जा रही है, आप बच्चे जवान है आपके सब कुछ, कही बस बेटी की शादी के इंतजार में तो थी कि अपने घर की हो तो मैं जाऊं भाई के पास, मैं तो कब से बुला रही थी, तो मुझे कब से बुला रहे थे। अब मैंने 40 साल मैंने बर्दाश्त किए इस आदमी के साथ, शौहर के साथ, अब मैं एक लम्हा भी गुजारा नहीं कर सकती, तो बेटी की ऐसे होगी नहीं, बेटी की शादी की टिकट कटाया हमेशा के लिए छोड़ कर चली, यही दो बीमारियां लग गई इस आदमी सब के साथ गुजारा कर करके, सही को पागल आदमी है, ये पता थोड़ी चलती है बातें, कितना जुल्म हो रहा है घरों में, 20 साल 30 साल 40 साल पूरी पूरी जिंदगी लोगों की ऐसी गुजर जाती है और एहसास नहीं होता, और गुस्से का जो मर्ज है ना ये बड़ा खतरनाक है भाई, बस तो इससे बचना चाहिए। मैं अकड़ और गुस्सा चौधरी साहब बने हैं, अल्लाह की ढील चल रही है ना, इसलिए अल्लाह की पकड़ नहीं आ रही, इसलिए इतनी जरूरत होगी कल के खुदा को अजियत पहुंचाने की, तो अल्लाह से डरना चाहिए। यहां तक फरमा दिया एक हदीस पाक का खुलासा मेरे प्यारे आकाए दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हशर वाले दिन जो शख्स अजाब का मुस्तहिक होगा और अल्लाह उस पर जबरदस्त गजब नाजिल कर रहे होंगे और जलाल में होंगे, उस वक्त अल्लाह पाक अपना गजब, अपना जलाल और अपनी सजाएं उस आदमी के ऊपर से रोक लेंगे जो दुनिया में रहते हुए लोगों की खताओं को माफ किया करता था। बताइए वाह कितना बड़ा अजर मिल रहा है कि जब हम 100% जब अजाब में जाने के या जहन्नम में जलने के मुस्तहिक तो अल्लाह जलाल में थे, गज़ब में थे, उस वक्त अल्लाह पाक कहेंगे जा मैंने तुझे माफ किया, इस वजह से कि तू भी तो रो गया गुस्से को, गुस्से में आता था तो, लेकिन लोगों की खताओं को तो फिर माफ कर दिया करता था, जा आज मैंने भी तुझे माफ किया, है ना। तो ये अल्लाह की सुन्नत है लोगों की खताओं को माफ करना, दरगुजर करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। तो जो बंदा भी ये काम करेगा तो गोया वो अल्लाह के साथ लग गया, अल्लाह वाले काम कर रहा है। तो फिर अल्लाह ने फरमा दिया तुम मेरे बंदों के साथ रहम करोगे, फिर हदीस शरीफ में इसकी मुफस्सल तफसील भी आई है, अल्लाह के मिशन मुहम्मद का खुलासा, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे तो तुम मेरे बंदों के ऊपर रहम करो, मैं तुम्हारे साथ रहम करूंगा। हम चाहते हैं ना अल्लाह हमारे साथ रहम व करम का मामला करे, तो उसके बंदों के साथ हम रहम व करम का मामला करें। हम इसको उल्टा कर लें, बहुत से लोग कहते हैं बहुत बाउसूल बाउसूल मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, फिर अल्लाह भी कहेंगे कि मुझसे ज्यादा तू बाउसूल नहीं है, मैं तेरा रब हूं, अगर तुझे बर्दाश्त नहीं होती गलत बात तो मुझे भी और तेरी कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी, अगर कोई तेरा कसूरवार है तो मुझसे तू भी मेरा बहुत बड़ा कसूरवार है, तू आगे नहीं छोड़ेगा लोगों को, बदला लेगा इंतकाम लेगा तो मैं भी तुझसे इंतकाम लूंगा, आजा फिर। हम तो किसी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे भाई, लेकिन अल्लाह ना करे अगर अल्लाह पाक मैदान में आ गए और हमसे मुकाबला शुरू कर दिया हमारे करतूतों की वजह से तो फिर हम कहां जाएंगे, लोग सोचते नहीं है ना भाई, इस तरह सोचना चाहिए, लोग पता नहीं किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। पर एक बुजुर्ग ने तो यहां तक फरमाया है कि मुझे हैरानी होती है उस आदमी के ऊपर जो बीवी को जुल्म करता है, मारता पीटता है, नंगी नंगी उसको गालियां देता है और फिर रात में उसी के साथ बिस्तर पे सो के उसके साथ सोबत करता है, तो मुझे हैरत होती है, शर्म आती है मुझे उसकी जात के ऊपर, ये कितना बेहिस इंसान है, कितना बेगैरत इंसान है, ये मारता भी है पीटता भी है गालियां भी दे रहा है रात में बिस्तर पे जाके सोबत भी करता है, यानी कोई गैरत भी तो होती है, शर्म भी तो होती है कोई, है ना। एक तरफ जुल्म करते हो इतना और इतना आजाब जिंदगी बनाई और तो अपनी ख्वाहिश पूरी करने तुम पहुंच जाते हो, ये तो जानवरों वाली जिंदगी है, उस बेचारी का क्या हाल होगा, क्या उसके जज्बात होंगे ऐसी बीवियों के। कितने फोन आते हैं मेरे पास, कितनी ऐसी खवातीन जो बैठ भी नहीं है, पत्नी कहाँ कहाँ नंबर गए, अब वो खवातीन के इतने कसरत से फोन आते हैं मेरे पास तो क्या बताया जाए। और ज्यादातर यही मसला शौहर का जुल्म और ज्यादती, ऐसे ऐसे जुल्म आते हैं कि मैं हिल जाता हूँ, इस दौर में भी 2026 में भी खवातीन ऐसे ऐसे जुल्म सह रही है, मशहूर ये कह रहे भाई आजकल की लड़कियां कहाँ बर्दाश्त करती हैं, वो तो 2 मिनट में उठाकर पटक देती, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी बेचारी शरीफ वाली बच्चियां ये सब नजर आ रही है और ऐसे ऐसे जुल्म उठा रही है कि जिसको वो बयान में हम बता भी नहीं सकते, लेकिन वह दिल हिल जाता है, रूह कांप जाती है कि ये मुसलमान है, ये लोग मुसलमान हो गए भी ऐसे कोई काम कर सकता है, इतना जुल्म और उससे ज्यादा खतरनाक ये सास और नंदे, अल्लाह माफ करे शौहर से ज्यादा, सब नहीं भाई, बहुत अल्लाह वाली और मोहब्बत वाली भी सास नंदे होती हैं, लेकिन तादाद बहुत कम है, अक्सर जो है ना कसरत के साथ, और जितने बेटे होते हैं सारे घर खरीद गुलाम होते हैं माँ के और अपनी बहनों के, बस वो सही गलत नहीं देखते, वो कहते हैं मेरी माँ है, भाई तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवी की माँ नहीं है, उसकी सास है, तुम मर जाओ जन्नत मिल जाएगी, माँ का बहुत बड़ा हक है, बीवी की माँ नहीं, बीवी की उसकी असली माँ, उसकी तो सास है, तो मोहब्बत वाली सास नंदे भी होती है लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, बकसरत जो है ना वो जिंदगी जहन्नम बनाई है सास नंदों ने, मुझे इतनी नफरत होती है अपने बेटे की और भाई की शादी के बाद जब इतना तब्दीली आती है, तो शादियां करते क्यों तुम लोग, क्यों किसी की बेटियां लाके जिंदगी जहन्नम बना दो, मत करो शादियां, उस वक्त मर रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, खुशामद कर रहे होते हैं, पत्नी कहाँ कहाँ अम्मा बहने फिर रही होती है, हमें भाभी नहीं मिल रही, हमें तो बेटे की नहीं बीवी नहीं मिल रही, हमें तो ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, अल्लाह पाक दे देता है तो फिर उसके बाद देखें कहानी दूसरी। अब अगर ये तस्वीर बताने लगे कैसे कैसे फोन आते हैं और क्या क्या बातें बताई जा रही है, वो तो फिर बयान का मौजू ही कहीं चला जाएगा। बहरहाल मुख्तसर ये कि जुल्म से बचना चाहिए, फिर ऐसी माओ को भी सोचना चाहिए, तुम किसी की बेटी लाके जुल्म करोगी तो तुम्हारी भी तो बेटियां हैं, फिर जब ये भी आके अपने घरों में जाएंगी क्या ये चैन से रहेंगी, ये मुकाफाते अमल शुरू हो जाएगा। इसी तरह वो लोग जो बीवियों पर जुल्म करते हैं सोचना चाहिए उनकी भी तो बेटियां हैं, अगर उनको अल्लाह ने बेटियां दी तो सोचे कल को ये भी जवान होगी, आपको भी दामाद मिलेंगे, फिर इनके साथ अल्लाह ना करे अगर जुल्म हुआ फिर आप पर दिल पर क्या बीतेगी। अगर चाहते हैं ना कि हमारी बेटियों को अच्छे शौहर मिले और अच्छे हमें दामाद मिले, तो आप किसी की बेटी को जिसको लेकर आए हो उसको मोहब्बत से रखो, तो फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह अच्छा ही हो। बस जो इंसान करता है वो अपने आगे पाता है, वो अपने आगे पाता है इनाम को। तो जुल्म से बचना चाहिए। और हुकूमत इबाद के मामला बड़े खतरनाक मजीद इसलिए भी होते हैं कि हुकूमत अल्लाह के गुनाह तौबा से माफ हो जाते हैं। नमाज नहीं पढ़ी, तौबा कर ली। अल्लाह ना करे किसी से कोई जना भी अगर हो जाता है तो जानिए के पास जाके माफी मांगने की जरूरत नहीं है कि जी वो 5 साल पहले आपके साथ यूट्यूबर 1, 2, 4 हुआ था, उसका बदला फिर शैतान आ गया, फिर हो गया भाई जना। तो वहां नहीं जाके उनसे माफी मांगनी भाई, ये शरी मसला है। अल्लाह से तन्हाई में बैठ के कह रहे अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ था, मुझे माफ कर दे, सब माफ हो जाएगा। बस ये वहां जाके जरूरत नहीं, नहीं तो शैतान फिर दोबारा हावी हो जाएगा। तो लेकिन हुकूमत इबाद के ये मामला होते हैं कि उसमें अल्लाह की माफी बाद में, अल्लाह से माफी बाद में मांगनी, पहले वो बंदे से माफी मांगे जिसको अजियत पहुंचाई, नहीं तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, शरीम अफसर। इसी चीज को शेख सादी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मुझे बड़ी हैरानी होती और मुझे तकलीफ होती लोगों की जहालत के ऊपर कि वो तकलीफ और जुल्म अल्लाह की मखलूक के साथ करते और माफी अल्लाह से मांगते फिरते। क्या बात फरमाइए कि सर किसी का फाड़ दिया, बाद में जाके अल्लाह से कहना अल्लाह माफ फरमा दे, वो मैंने उसका सर फाड़ दिया। अरे भाई जिसका सर फाड़ा है मिसाल है उससे माफी मांगो ना, तो फिर उसके बाद अल्लाह से माफी मांगो, जब वो बंदा माफ कर देगा तो अल्लाह भी माफ कर देगा। ये है तरतीब, ये तरतीब है। इसी तरह बहुत से लोगों का कर्ज लेके बैठे होते हैं, पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं होते। भाई चलो मजबूरी है नहीं, अलग माल है, प्यार मोहब्बत से उनसे मोहलत दे लो, टाइम दे दो। और हदीस पाक का खुलासा है कि अल्लाह के जिम्मे अपने शाने रहमत से लाजमी है उसको गनी करेंगे जिसका पैसा देने की नीयत होगी, लाजमी नीयत की वजह से देने की नीयत रखे वो एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ देखा जाता है अक्सर लोग जो उनकी हैबिट यही है, हैबिचुअल है, लखपति करोड़पति होगा लोगों का माल खा खा के और देने की नीयत नहीं। जो बहुत ही गले पड़ता है तो थोड़ा बहुत उसको चुप कराने के लिए 2-4 लाख रुपए दे दिए, वही 50 लाख लिए हुए थे 2 लाख रुपए दे रहे हो, हाँ यार आएंगे तो थोड़े थोड़े करके दूंगा, जबकि पैसा बहुत तो नहीं दे रहे, क्योंकि वो रोड किया है ना, कई बार रोडिंग चल रही है, अगर निकाल के घंटा 50 दे दिए कहेंगे मेरा नुकसान होगा। अरे भाड़ में गया तुम्हारा फायदा ऐसा नुकसान, वो बेचारे का तुमसे उसने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया और तुम ऐसी तुमने उसको सजा दिया, आज वो किसी के साथ नहीं करेगा, वो कानों को हाथ लगाएगा। लेन देन के मामला अपने साफ रखने चाहिए। किसका कर्ज लिखा हुआ है वसीयतनामे के फॉर्म पर, किसका कर्ज मेरे ऊपर वाजिब अदा है जिनका मुझे चुकाने है, इतना मैं दे चुका इतना मैं इतना रहता है, और फिर घर वालों को ये बताएगी फला फला का पैसा मेरे ऊपर निकलता है, अगर मैं मर जाऊं तो ये उसको ये दे देना, और हमारा पैसा अगर किसी पे निकलता वो भी आदमी एंट्री कर दे, वो भी एंट्री कर दे। इसी तरह किसी का पैसा नहीं निकलता तो उसमें फिर ये भी लिख दे कि जी मेरा पैसा किसी को ऊपर नहीं निकलता और ना मुझे किसी से पैसे वसूल करने और ना मैंने किसी से पैसे दिए हैं, क्योंकि बार दफा ऐसे वाकयात भी हुए कि पैसे वाले लोग जब किसी का इंतकाल हुआ 2-4 लोग बड़े बड़े दावेदार आ गए कि जी इन्होंने हमारे इतने पैसे लिए थे, तो उज्जत बचाने के लिए उनको 2 लाख रुपए देने पड़े, पता ही नहीं मैं थोड़ी उठ के बताइए थी लिए थे या नहीं लिए थे। तो इसलिए जिंदगी में वसीयतनामे में सारी चीजें आदमी लिख दे, लेन देन के मामला अपने दुरुस्त रखे सारे, इसके पास क्या है क्या नहीं है, ये आमाल की, ये आमाल का वसीयत नामा है। इसी तरह एक वसीयत नामा होता है विरासत से मुताल्लिक, प्रॉपर्टी, कैश इन हैंड, प्लॉट, दुकानें, वो किसी मुफ्ती साहब से पूछ के कितनी औलादे हैं, क्या एसेट्स है, वो सारा एक पर्चे पे लिख के कितनी औलादे हैं, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, कैश इन हैंड कितना, सारी चीज तफसील लिख के किसी मुफ्ती साहब को जमा कराएं, वो चंद दिन बाद जवाब देंगे, दारुल उलूम की मोहर होगी, उसमें पूरी तकसीम लिखी होगी शरई तकसीम के किसको कितना क्या देना है। अपनी मर्जी से जहां पर भी लोग डंडी मारते हैं, अमाल की वसीयत नामा उसमें भी डंडी है, पता ही नहीं क्या वसीयत नामा में अमाल करने वाले मरने से पहले पता ही नहीं। इसी तरह माल की क्या विरासत है उसमें क्या वसीयत करनी है, वो क्या करना है वो भी कुछ नहीं पता। चल रही है जिंदगी, नोट आ जाए बस, नोट नोट और वोट की तलाश में रहते हैं लोग, तो भाई ये तो जिहालत है। तो हदीस शरीफ का खुलासा है, आपने इरशाद फरमाया बाप जो बड़े नेक परहेज़गार होते हैं, नमाज रोजा कुरान शानदार होते हैं उनके अमाल, लेकिन मौत के वक्त वसीयत नहीं करते या गलत विरासत तकसीम करते तो सीधे जहन्नम रसीद कर दिए जाते। विरासत की जो मामलात है ना, ये लोगों को पता नहीं, आप सबने सारी चीजों की नफी कर दी कि अल्लाह कुछ नहीं देखेंगे, पूरी पूरी पास्ट में उनके क्या अमाल थे, कितने ही शानदार अमाल हो, फरमाया फौरन यानी देर नहीं करेंगे, फौरन यहां हमारा सीधा जहन्नम, अब्बा की थोड़ी चलेगी, रब्बा की चलेगी, ऐसा नहीं है कि अब्बा की चलेगी, अब्बा की नहीं चलेगी भाई, रब्बा की चलेगी, जो अल्लाह ने माल दिया, हमारी जान माल इज्जत आबरू सब अल्लाह की देन है, जब उसी की दी है तो वो मालिक वो है, हम तो खाली केयर टेकर होते हैं, मुतवल्ली होते हैं उन सारी चीजों के, तो जिसका माल है उसकी चलेगी, तो फिर अल्लाह ने सारी तरतीब बताई भी है, किसी उलमा कराम से पूछे, मुफ्ती आलम कराम से पूछे, और फिर होता है क्या, बहुत से लोग एक तो गलत वसीयत कर जाते हैं मरने से पहले, यार ये नाफरमान है इसको तो मैं नहीं दे रहा, या मेरी बेटी ज्यादा परेशान है उसको सारा देगा, या एक बेटे को बहुत कुछ दे दिया, दूसरों को हल्का सा कुछ दे दिया, थोड़ा बहुत खाना पूरी के लिए, ये सारी चीजें जन्म रसीद करवा थी, शरी तकाजे पूरे करने होंगे, और आप हदीयतन किसी को और आपको किसी को कुछ ज्यादा देना चाहते हैं, वही बात किसी मुफ्ती मुहतिक मुफ्ती साहब से पूछे, वो कुछ बता देंगे, भाई किसी को आप ज्यादा देना चाह रहे हैं तो उसकी क्या शक्ल होगी, अपनी मर्जी से ना करें, ये गलत तकसीम पर आप असलम फरमा रहे हैं कि सीधा जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा, जो सिरे से करते ही नहीं वो अलग अजाब है, कितने ऐसे जनाजे पता चले, नहीं हमारी गुलशन खानका का वाक्य पता चला कि वहां पे मुफ्ती साहब ने बयान के दौरान बताया कि यही वही गुलशन के इलाके में रात को 11 बजे कुछ लोग आए किसी घर से, बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा अगर अल्लाह का वास्ता किसी को भेज दिए कुछ लोगों को कि मैयत उठानी है और गुसल वगैरह देके और फिर उसकी तदफीन का इंतजाम कराना है, देखो रात को 11 बजे खैरियत, फिर इंतकाल करो ना सुबह को, सुबह इंतकाल हो रात के 11 बजे, पहले वो उनके इंतकाल के साथ ही हुआ ये कि उनके सारे बेटे बेटियां दामाद जो मुख्तलिफ शहरों में और पत्नी कहां कहां रहते थे या करीब के दूर, तो सब आ गए, अब जब वो जमा हो गया तो फटला शुरू हो गया कि अब बाकी फला फला फैलने का है मकानों की प्रॉपर्टी, अब पैसे वाली लोग थे, अब उनके बहुत प्लॉट थे, पता नहीं कहाँ का कितने बैंक अकाउंट थे, अब इस कदर शदीद फटला हुआ कि वो हाथ अफाई शुरू हो गई, ना वो फटला हो रहा है शाम से, अलमारियां तोड़ दी छीनने के चक्कर में, मैं लूंगा, वो बेटियां लड़ रही हैं, दामाद लड़ रहे हैं, बेटे लड़ रहे हैं, ये तूफान बदतमीजी मचा, वो लाश मैयत वही रखी है जहां तक की 11 बजे, ये सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, ये पूरा वाक्य आपको बता रहा हूँ, तो उसके बाद कुछ लोग गए भेजा, फिर हजरत ने फिर वहां से सारे मामला उनके करवाए थे, उनकी तदफीन वगैरह का मामला किया, तो फिर जब दुनिया में अल्लाह ने इतनी जिल्लत मिली तो फिर कब्र और हशर में क्या हाल होगा, ऐसे ही मर गए, झगड़े की झोपड़ी छोड़ गया, अब तुम्हारे वारिसिन लड़ रहे हैं मर रहे हैं, दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, नफरतें कर रहे हैं, तो जिंदगी में इस चीजों की फिक्र करनी चाहिए कि क्या मामलात को लेके चलना है, इसको बड़ा आसान समझा हुआ है लोगों ने, दीन हमारा से नमाज रोजे तक महदूद नहीं है कि बस जन्नती हो गए, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से जहां आगे और भी हैं, अभी इश्क इम्तहा और भी हैं, जो दो तीन अमाल के ऊपर लोग बस कर देते हैं, कहते हैं बस निजात के लिए काफी है, वही बात किसी सच्चे अल्लाह वालों की सोबत में जाए तो पता चले ना, फिर जो आईना दिखाएंगे तो फिर पता चलेगा हम कहाँ खड़े हैं, इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया रहमानों का फल भी खबीरा, जो कुरान पाक की आयत शुरू के बयान में पड़ी गई थी, रहमान की खबर उसके बाखबर लोगों से पूछो, खुद अल्लाह पाक अपना एड्रेस बता रहे हैं, अजीब बात है, अल्लाह कह रहे हैं मेरी खबर मैं कैसा हूं, मैं कैसा प्यार हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसे मेरे मामलात हैं, तो उनसे जाके मालूम करो रहमान की खबर, जो मुझसे पहले से बाखबर है उनके पास जाओ, वो बताएंगे तुम्हें, हर आदमी मेरी हर इंसान मेरी मार्फत नहीं रखता, ये गुल प्लाजा का वाक्य शुरू में कहा था कि जैसे जो भी हुआ चाहे वो दहशतगर्दी कह लें या तफाक से हुआ, अल्लाह ही गैब जानता है, लेकिन होता है अल्लाह के हुक्म से जो होता है, ये तो हमारा ईमान है, हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है, तो कितने बेचारे उसमें जो सेलमैन वगैरह थे सब गरीब थे ज्यादातर, क्योंकि अक्सर जो मालिकान दुकान पर नहीं होते, ज्यादातर जो होते हैं वो सेलमैन वगैरह होते, और एक दुकान पे चार चार छह छह लोग थे, और बेसमेंट से लेकर पता नहीं कितने फ्लोर तक भरा हुआ वो लोगों से, और सैटरडे का गालिबन दिन था, वीकेंड था, तो हफ्ते वाले दिन तो और ज्यादा रश होता है बाजारों में, कितनी फैमिली बेचारी जिंदा जल गई, उनके बाकियात मिल रही, उनके जिस्म के आधा तक नहीं मिल रहा, वो पौड़ा हो गए, हड्डियां भी नहीं मिल रही उनकी, पता था किसी को भी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अब ये आखिरी दफा है बस, इसके बाद हमारी सांसें नहीं है, तो उन सेल मैनों को पता था क्या वहां के काम करने वालों को पता था? क्या उनको पता था ये शॉपिंग करने गए? नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता, मौत का नहीं पता होता, अचानक आ जाती। इसलिए हजरत वाला ये शेर फरमाते थे, गनीमत समझ लो इसमें बैठने को, मुबादा फिर ये वाह मिले ना मिले, मिले ना मिले, फिर अगर मौत आती भी है तो अल्लाह तेरा फजल है, तेरी रहमत है, इंशाल्लाह मजे मजे से आदमी गुजरता है। और नेक लोगों की जो मामलात होते हैं कुछ और होते हैं, ये नहीं समझना चाहिए अगर चल रहा है तो उसको कोई जलने वाली तकलीफ होगी, वो तो जाहिरन हमें नजर आता है। जैसे उलमा मशाइख को अंग्रेजों ने तोप के दहाने पे रख के उड़ा दिया था, तोप से उड़ाना मामूली बात नहीं होती, कई हजार उलमा को जब पाकिस्तान बन रहा था या 1857 की जंग में पढ़े तो सही वाक्य, तोप के दहाने पे रख रख के गोलों से उड़ाया था। तो इतने जुल्म हुआ है मुसलमानों के ऊपर उलमा मशाइख पे, आजादी की नहीं भारत तो बगैर तकलीफ दे मौत नजर आती है। लेकिन वही बात, अल्लाह ने हर चीज का ताल्लुक अमाल से जोड़ा हुआ है, शानदार अमल होंगे चाहे वो आग से भी जल रहा है, चाहे उसको तोप के गोले से उड़ा दिया गया, लेकिन उसको मजे हासिल कर रहा होगा, उस तोप के गोले से उड़ाने में भी उसको लज्जत और मजा आ रहा होगा, मजा आता है आग में जलने में, मजा आता है, वो बगैर हमें आग जलती हुई नजर आएगी। और एक आदमी सुकून से आराम से एसी में उसका इंतकाल हुआ है, कोई तकलीफ नहीं कुछ नहीं है, सुकून से लोग कह रहे हैं कि माशाल्लाह आराम से मरे, लेकिन अगर अमाल खराब थे तो अंदर की हैसियत हम नहीं देख सकते, तो बाहर से कुछ नहीं होता। जैसे कमर लाख संगे मरमर की बना दी जाए, लाख ऊंची जबरदस्त, लाख उस पर चारों को ऐसे कुर्सी लिख दिए जाए, लेकिन अगर अंदर अजाब हो रहा होगा तो ऊपर का हुस्न जमाल उसे बता नहीं सकता, बचा नहीं सकता। ऊपर से कमर कच्ची है, कुछ भी नहीं है, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं कमरों में, होता ना ऐसे, लेकिन अंदर अगर अमाल अच्छे थे, जो रूह नेक थी, तो बस अंदर कई मजे कुछ और ही होंगे, बाहर कुछ भी होता है। तो असल तो बातें ना अंदर, क्या अमाल थे अंदर क्या है और बाहर क्या, बाहर की सजावट से क्या होता है अगर अंदर माल ना हो। तो इस बयान का हासिल ये था कि भाई इस तरह के जो वाकयात होते हैं, इन वाकयात को ये सोचना चाहिए कि आरजी दुनिया है, हम में से किसी का भी नजर किसी का भी वक्त आ सकता है, तो अपनी तैयारी पूरी करके रखें, फिर उसके बाद तैयारी पूरी करते रहें, और फिर उसके बाद खूब खाएं पिए हंसे बोले खुश रहें। ये नहीं कि मौत और खौफ दिल में रख के नफसियाती आदमी हो जाए, वो तो जाना भाई, क्योंकि मशाइख ने फरमाया कि भाई जन्नत में जाना जो है वो बगैर मरे है नहीं, जन्नत में जाना बगैर मरे है नहीं। एक बुजुर्ग थे, अपने छोटे बच्चों को कब्रिस्तान लेके जाते थे और कहते हैं बेटा बेटा ये देखो ये है स्टेशन, बच्चे पूछते थे बेटा अब्बा किस चीज का स्टेशन, कहेंगे बेटा जन्नत की ट्रेन में बैठने का ये स्टेशन है। और फिर जन्नत की पूरे पूरे उनको वाकयात सुनाते थे, ऐसी मजे होंगे ऐसी नेमत होंगे, बच्चे दुआ मांगते थे अल्लाह जल्दी हमें स्टेशन में भेज दे। मतलब क्या था कि मौत का खौफ और दहशत खत्म करो, उसको दूसरे अंदाज में आदमी बयान करे ना। अगर फरमाते थे ज्यादा मौत और कबर का मत जिक्र करा करो लोगों को, क्योंकि आजकल के लोग बेचारे कमजोर हैं आसाबी तौर पे, एक तो वैसी परेशान है आपने ज्यादा डरा दिया, तो बेचारे बिस्तर ना पकड़ लें, लेकिन भाई ऐसा हम तो नहीं दिखते, हमें तो ज्यादा फंटर ही नजर आते हैं। बहरहाल कमजोर लोग भी होते हैं। अब हजरत के बाद भाई बहुत रश होता था, हर तरह के लोग आते थे, हजरत ने फरमाया सौ फीसद दुरूद फरमाया, कमजोर आते थे लोग। अब बहरहाल तो ये जो मामला है कब्र के, तो नेक आदमी के लिए मजे बाहो बाहर मजे ही मजे, तो जन्नत जब तक मरेंगे नहीं कब्र में उतरेंगे नहीं उस वक्त तक जन्नत में एंट्री होगी नहीं, मजे कहां से शुरू होंगे, आप असलम की ज्यारत कहां से शुरू होगी, आल और अफाक की ज्यारत कहां से शुरू होगी, नेक लोगों की ज्यारतें कहां से शुरू होंगी। भाई कब्र में उतरना तो लाजमी है, असल जो सफर मजों का लज्जतों का जन्नत का सफर ही शुरू कब्र से होता है। फरमा दिया ना असल ने कब्र या तो जन्नत के बाघों में से बाघ है, जहन्नम के घड़ों में से घड़ा, तो परेशानी की बात नहीं है, ना कोई डरने की बात है, बस अपनी तैयारी पूरी करके रखे, बस ये है हासिल, और वक्त की कदर कर ले और अपना वसीयतनामा पूरा करके रखे, उसके बाद खूब हंसे बोले खाए पी। और एक बात बहुत अहम, बहुत से लोग कुछ परेशानी आ जाती है जिंदगी में, किसी चीज का नुकसान हो गया, जब कोई तकलीफ आ गई तो उस वक्त में वो वक्त को जाया करते रहते हैं, फिर वो नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, फिर वो शिकवे शिकायतें शुरू कर जाते हैं, अल्लाह से नाराज भी हो जाते हैं बाद लोग। लेकिन मौत अपने वक्त पे आएगी, तुम्हारे नाराज होने से मौत ये नहीं होगी कि यार इसकी मौत को टाल दो, ये हमसे आजकल नाराज चल रहा है, मौत अपने वक्त पे आएगी भाई। तो वक्त को जाया नहीं करना, उल्टे सीधे चक्करों में उल्टे सीधे खराफात में जो करने है काम है उसमें लगा है, वो वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब ये कोई भी हालात हो, अपने मामला अल्लाह से दूर करता हुआ चले। वो ठीक है, मर्द जहर होता है और नशीबों पर आते रहते हैं जिंदगी में, उसके अफराद भी होते हैं, लेकिन सोहबत अहलुल्लाह में जुड़ा है, इसलाह कराता रहे, इंशाल्लाह अल्लाह उस गर्दाब से निकाल देंगे। इसमें हजरत का शेर था ना, कोई जीता कोई मरता ही रहा, कोई जीता कोई मरता ही रहा, इश्क अपना काम करता ही रहा। तो बस ये है, तो वक्त को जाया नहीं करना है, कहीं रुकना नहीं है किसी बात के ऊपर, किसी चीज को पकड़ के आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि वक्त महदूद है, ये रुकेगा नहीं, वो वक्त आ जाएगा हमारा। करने वाले काम करने, कामयाबी तो काम से होगी, ना कि हुस्ने कलाम से होगी, फिक्र के इल्तिजाम से होगी, जिक्र के दवाम से होगी। बातों से काम नहीं होगा, ये बातों से रास्ता तय नहीं होगा, बस करने वाले काम करें। अल्लाह जल्ला जलालुहु व तआला शानहु। आखिर में अल्लाह फरमाते थे, पांच अमाल बहुत जरूरी है, बयान कर दिया करो। इन पांचों अमालों का ताल्लुक जो है फराइज और वाजिबात से, जो भी इंशाल्लाह पांच अमाल कर लेगा उस वक्त तक नहीं मरेगा इंशाल्लाह, जब तक अल्लाह पाक उसको अपना वली नहीं बनाएंगे। तो पहले कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने का एहतमाम करें, दो ढाई महीने की मेहनत है किसी भी कारी साहब से, कुरान पाक को दुरुस्त करें, तजवीद सही करें, और एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, चारों इमामों का इजमा है, किसी का इख्तलाफ नहीं है, एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, और चावल के दाने के बराबर भी अगर दाढ़ी कम है तो फिर ऐसी दाढ़ी का रखना हराम है, और हराम काम करने वाला कभी अल्लाह का वली दोस्त नहीं हो सकता। और मूछें बिल्कुल बारीक रखें, और बड़ी मूछ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उसकी शफाअत नहीं करूँगा। नंबर दो, मुनकर नकीर जब कब्र में आएंगे तो गुस्से की हालत में आएंगे। नंबर तीन, कब्र में उसे अजाब दिया जाएगा। तो ईरान के दो सफ़ीर आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उस जमाने में ईरान में आपकी पूजा होती थी, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और दाढ़ियां मुड़ी हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के नागवारी और नफरत से मुंह फेर लिया, और फिर उसके बाद जो है वो आप उसमें नाराजगी का इजहार फरमाया, तो फिर आपने उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने में देख के मुंह फेर लिया, फिर आपने इरशाद फरमाया तुमने क्या शक्लें बनाई कि तुम दाढ़ियों को मुंडाते हो, मूछों को बड़ी बड़ी रखते हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे बादशाह ने हुक्म दिया ऐसी शक्लें बनाने का। फिर आपने इरशाद फरमाया लेकिन मेरे रब ने हुक्म दिया कि दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूछों को कतरवाओ, मूछों को बारीक रखना और दाढ़ी मुट्ठी करें, और नंबर तीन, मर्द हजरात जो है अपने टखनों को खोल के रखा करें, ऊपर करके रखा करें पैंचों को, यानी चाहे वो पैंट हो पजामा हो शलवार हो, दूर से नजर आना चाहिए कि टखने खुले हैं। तो बाग लोग तो बहुत कम ऊपर करते हैं पैंचे, माइक्रोस्कोप में से देखना पड़ेगा, तो रिपोर्ट आएगी कि शफाफ बदगुमान हो रहे थे पैंचे टखनों से ऊपर से। तो भाई थोड़ा सा बढ़ा लें ये टखनों से, एक इंच ऊपर कर लें। अच्छा बाग लोग को ऐसा गुरू करते हैं, वो इतने ऊपर कर लेते हैं कि वो घुटनों तक आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है वो मछेरा आ रहे हैं। तो भाई मछेरा भी नहीं बनना है, वो सुन्नत का लोग मजाक उड़ाए और देखने में किसी को हरत है, तो मोतेदिल अंदाज तैयार करना चाहिए। तो आज बहुत से लोगों टखनों से ऊपर जो है वो एक इंच पैंचे करते हुए शर्म आती, लेकिन यहूद नुसारा के तरीकों में और ईसाइयों के तरीकों में अंग्रेजों के तरीकों में फखर नजर आता है, तो वो उन्होंने घुटनों तक पूरे हाफ शॉर्ट पहन लिए, चड्डा पहने हुए फिर रहे, उसमें स्टाइल नजर आ रहे हैं, है ना जी। पर आप असलम की मोहब्बत में जो मल वाजिब है, एक इंच टखने से पैंचे ऊपर करते हुए शर्म आती है, लेकिन घुटनों तक नंगा कर लिया उसमें उनको शर्म नहीं आई। ये घुटना एक छुपाने की चीज है मर्दों का, तो ये चीज है। तो और खवातीन का टखने छुपाने का हुक्म है, शायद बात खवातीन समझती है कि ये टखने खोलने का ऊपर करने का हुक्म हमारे लिए भी है, तो भाई वो खवातीन जो है उनकी नहीं है टखनों को, तो खवातीन को छुपानी है, और खवातीन को तो पूरा ढक्के रहना चाहिए, और खवातीन दो काम करने, दाढ़ी और टखनों शोर पैंचों की जगह, कि एक तो शरी पर्दे का अहतमाम करें और जायज उम्र में अपनी शोहर की अताअत करें, और आखिर के जो दो अमाल हैं वो दोनों में मुश्तरक हैं। चौथा अमल, कुल लिल मोमिनीन यगुज्जू मिन अबसारिहिम व यफ़रहू फुरूजहुम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी बाग निगाहों की हिफाजत करें और शर्मगाहों की हिफाजत करें, और खवातीन को अल्लाह पाक अलग हुक्म दे रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो मर्दों को अल्लाह पाक अलग हुक्म दे रहे हैं, खवातीन को अलग हुक्म दे रहे हैं नजरों की हिफाजत का, और हदीस शरीफ में जिन लाइन नजर नगरबाजी आंखों का जिना है, और नाजिरा मंजूर है, अल्लाह पाक लानत फरमा, वसल्लम की बद्दुआ आ रही है, अल्लाह पाक लानत फरमा जो बदनजरी करे, और अल्लाह उस पर भी लानत फरमा जो बदनजरी की है, तो पेश करें।
اس کی لعنت کی بد دعا, رسول اللہ امام الانبیاء آفت وسلم کی بد دعا, تو کہاں چین ملے گا؟ اور پانچواں عمل یہ کہ دل کو بالکل پاک صاف رکھیں گندے خیالات سے. وہ شیطان ڈالتا رہتا ہے, اس میں آدمی گناہگار نہیں ہوتا, لیکن جان بوجھ کے گندے خیالات کا دل میں لانا, جمانا اور اسے مشغول ہونا یہ صحیح نہیں. اور ان پانچواں عمل کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کرنے, تو ان شاء اللہ تھوڑے عرصے میں پانچواں عمل کی توفیق ہو جائے گی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا رب كريم يا رحم الرحيم. يا الله جو کچھ بھی بولا گیا سنا ہے کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اللہ کہنے سننے میں جو غلطی کمی بیشی ہوگی تو شان رحمت سے بخش دے, معاف فرما دے. اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں, اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ہم سب کی کامل مغفرت فرما, یا اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے. اللہ ہم سب کو کامل تقوا عطا فرما. یا اللہ جاہی اور بھائی جتنے امراض رزیل ہیں ان سب سے ہم کو نجات دے دے. خاص طور سے اللہ جو آج کل یہ موبائل کا جو فتنہ چل پڑا ہے, اللہ پاک اس نے کسی کو نہیں چھوڑا سوائے چند تیرے جو خاص خلیل بندے ہیں, اللہ وہی بچے ہیں. اللہ اس کی موبائل کی لعنت سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما یا رب کریم, اور اس کے غلط استعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنا خوف دل میں عطا فرما. اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں, اللہ تو جاننے والا ہے, ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. جو بھی یہاں ہے محروم نہ جائے, دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما, جتنے بھی مصیبت زن ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما, تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما, تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال رخ سے غنی فرما. یا ارحم الراحمین, بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت عبر کی حفاظت فرما. تمام امت مسلموں کی جان و مال عزت عبر کی حفاظت فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی, انڈیا کے مسلمانوں کی, اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں مغلوب ہیں, اللہ ان کو غلبہ عطا فرما. ان کی جان و مال ہر چیز کی عزت اور ہر چیز کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے یہودیوں کو, ان کے مددگاروں کو, اور جو بھی اسلام دشمن لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ برباد کر دے, صفحہ ہستی سے مٹا دے, عبرت کا نشان بنا دے. یا اللہ علماء اور مشائخ کی, مساجد کی, مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحم الرحیم تمام دینی شعبوں کی حفاظت فرما. یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی, کل مومنین مومنات کی, کل جنات کی, میرے ساس سسر کی, سب کی کامل مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. سب کی کامل مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلیٰ آلہ. آمین ثم آمین. الحمد لله.